एक प्रश्न आया है, वो सज्जन कहते हैं कि मैं अपने सत्संग भाई बहनों को सत्संग एवं कथा में जब गोमुखी में माला फेरते और राम राम की कॉपी भरते देखता हूँ तो आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि दो दो काम एक साथ कैसा कर लेते हैं। ऐसा करना लाभप्रद है, उचित हो तो मार्गदर्शन कराने की कृपा करें। मन दो बात है, एक जप करते हैं, एक सत्संग सुनते हैं। एक कॉपी में राम राम लिखते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो ये कोई ज्यादा लाभ की बात हो तो वो बताओ जो हम सब करें, और ये न करने की बात हो तो कहो। इस विषय में प्रश्न है। तो जब माला फेरते हैं गोमुखी में यात्रा करके तो स्वतः जब होता हो, सत्संग में मन रख करके सत्संग तत्परता से सुनते और जब होता हो तो उसमें तो बाधा नहीं आती। पर जब करते हैं तो फिर ध्यान जब करने में रहेगा तो सुनने में रहेगा, तो दोनों काम साथ में नहीं होंगे। अभ्यास जब करने का हो तो जब होता रहता है सत्संग ध्यान से सुनते रहते हैं, पर ध्यान एक तरफ ही रहेगा तो उन तक ध्यान नहीं रहेगा। स्वभाव नाम का जब का पड़ रहा है और ध्यान पर सुनते हैं तो वो जब होता रहो कोई से विरोध नहीं है, परंतु ध्यान रखे दोनों कैसे करे भी? कभी माला में रखे, कभी सुनने में रखे। सुनने में ऐसी बात है कि तत्परता से सुनने से लाभ होता है। बीच में मन और जब याद आता है, घर की याद आ जाती है और बातें याद आती, तब सत्संग असली ठीक नहीं सुन सकता हो। अटकल लगातार पहले ये सुना अब ये सुनाऊं, परंतु तत्परता से निरंतर धारा प्रवाह जो बात चल रही है उसको सुनना चाहे तो मन लगाकर सुनना चाहिए। हमारे भाई बहनों को सत्संग सुनना आता नहीं है, सत्संग सुनना भी एक विद्या है, ये एक आवश्यक है। आज मेरे को याद दिला दिया, इस वास्ते इस विषय में बात बताऊं, नहीं तो मैं जानता हूँ सुनते ही हम सुनते हैं। सुनना मामूली बैठ गए सुन लिया, ये भी ठीक है, पर सुनने की एक विद्या है। उस विद्या से अगर काम लो तो उस तरीके से, उस युक्ति से, उस प्रकार से सुनो तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। हमारे सहपाठी थे साथ पढ़ने वाले, समा परीक्षा दे चुके, उसके बाद वो बोले कि अब मेरे को पढ़ना आया है, पढ़ना कैसे करना चाहिए ये मैं सीख रहा हूँ। अब ऐसी मैंने जी ने कहा था, क्या सीखे हो कि पढ़ना जब गुरु पढ़ा रहे थे उन्हें मुख की तरफ देखते हुए उनमें ध्यान देकर तत्परता से सुनता, वो सुनते सुनते भीतर में धारण हो जाता है, तो वो सुनने का एक तरीका है। कभी मन लगा कभी न लगा, कभी इधर देखा उधर देखा इधर देखा, सुनते हैं तो वो सुनना नहीं आता, वो पढ़ना आता नहीं उसको। मैं तो बहुत भाइयों को देखता हूँ, प्रश्न पूछते हैं और फिर प्रश्न पूछते हैं, तो मेरा असर पड़ता है कि मेरे उत्तर को सुनाई नहीं देना, पूछने वाला नहीं सुनता। तो कभी कभी तो मैं तेजी मार के, तो भाई तुम तो सुनो, कभी सुनो और सुने न सुने, पर तुम पूछने वाले तो सुनो, ऐसे देखने लगे ऐसे सुन लेते। और कई कई तो ऐसे सज्जन मिले हैं, ये भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्यों कर बैठ जाए तन करके, ये सुनते ही ऐसा उसने क्यों किया, ऐसे शासन करते। भाई सुनते हो तो पूछते हो तो कम से कम पूछने वाले को सुनना चाहिए ना। जो कोई नहीं सुनते हैं तुझे क्या सुनेंगे। तो जप करते हुए स्वतः जप होता हो तो कोई परवाह नहीं, उस जप होने दो, उसको मिटाना नहीं है। पर मन लगा कर जप करना चाहते हो तो सत्संग में जप नहीं होगा, या जप होगा तो सत्संग नहीं होगा, सुनाई नहीं देगा। मैंने ऐसी बात कही है, याद आ गई, स्वर्गाश्रम में जहाँ सत्संग होता है पढ़ने से, वहां कई भाइयों को मैंने बातें कही, कही तो सुनी तो मैंने कहा देखो आप ध्यान दो तो सुनने में आवेगा, तो ध्यान दो तो सुनने में आवेगा, तो एक ही बात सुनोगे दो नहीं सुन सकोगे। तो मैंने उदाहरण बताया, अभी देखो गंगा जी का शब्द हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, इतनी देर आप सुनते थे गंगा जी का शब्द कि नहीं सुनते थे, तो कान भी आपके शब्द भी साथ में है, परंतु सत्संग में मन लगा है गीता की ध्वनि नहीं सुना, गंगा जी की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये उस समय मन क्या कर देगा, अब सुनता है गंगा जी का शब्द हो रहा है, सुनते कर रहा सुनते हैं, अभी सुनते थे कहना, तो कान भी है शब्द भी है परंतु मन नहीं लगाने से सुनता नहीं वो। तो इस तरह से आप मन और में लगाओगे तो, क्योंकि सत्संग नहीं सुना जाएगा, और सत्संग सुना जाएगा तो और में मन नहीं लगेगा। आपसे आप जब होता है ऐसा अभ्यास है, जैसे श्वास लेते हैं और सत्संग सुनते हैं, नाड़ी चलती है सत्संग सुनते हैं, तो उसे मन थोड़ी लगना पड़ता है, नाड़ी कैसे चलती है इसमें मन नहीं लगना पड़ता, श्वास में मन लगा नहीं पड़ता। आंख खोलते हैं मीचते हैं सत्संग सुनते हैं तो आंख खोलने में जो मन नहीं लगाना पड़ता, ऐसे भजन होता हो स्वाभाविक तो उसमें तो हो सकता है दोनों, परंतु करना चाहते उसमें सुनता है, और लिखना तो हो ही नहीं सकता। नाम लिख रहे हैं काफी भरे, राम 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 लिख रहे हैं सत्संग में, तुम्हें क्या भावना भगवान जाने, मेरे पर तो ऐसा असर पड़ता है कि सत्संग के राम नाम लिखने के लिए समय नहीं मिलता, घर में काम धंधा रहता है, भगत मिलता नहीं, यहाँ निक में बैठे हैं तो यहाँ काम ही कर ले, तो निक में बैठे आते हैं यहाँ, अभी निक में बैठे जब कोई काम है नहीं, आप राम राम की कॉपी भर लो, वे सत्संग नहीं सुन सकते, मेरी समझ में कॉपी भरने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये समय फालतू जाता है, इस बार देर में कॉपी भर लो, तो फालतू समझते हैं वो कैसे सुनेंगे। तत्परता से मन लगा कर सुनना चाहिए, और सुनते सुनते ये विषय चला, इस पर ये बात आई, इस पर ये दृष्टांत दिया, ये युक्ति दी, ये दोहा कहा, ये छंद कहा, ये युक्ति कही, ये दृष्टांत कहा, पट विचार, हाँ ये बात है। ऐसे सुनने वाले तो मैं जब सुनाना शुरू करता हूँ तो वे कह देते हैं अब ये कहोगे, अब ये कहोगे, ये कहोगे, आगे भी दौड़ती है, सुनाने में सुनते वाले नहीं। मैं फिर से प्रसंग आरंभ करता हूँ तो वो सुनने वाले जो समझदार है वो सच समझ लेते हैं कि अब ये विषय कहेंगे, अब ये विवेचन होगा, पहले पता लग जाता है, क्योंकि मेरी बातों से परिचित है, महीनों से वर्षों से सुनते हैं मेरी बातें, जब आरंभ करता हूँ तो आप समझ लेते ये बातें होती है, तो उनके समझ में बातें आ जाती है, इस बात श्रृंखलाबद्ध हो जाती है। तो नया आदमी सुनता है उसके समझ में नहीं आता, नया आदमी सुनता है तो उसकी बातें समझ में जल्दी नहीं आती, क्योंकि वो सुनने की अटल नहीं है। यहाँ आजकल आप सीख लो, कई जगह नए कथा में जाओगे तो वहां भी आप सुन लोगे। कई दिन सुनते 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 सुनना आता है, अगर वही बुद्धिमानी में विचार के तो जल्दी सीख सकता है, नहीं तो नहीं सीख सकता। इस वास्ते सबने वो जो काम करो उसे मन लगाओ। एक और बात बताऊं ध्यान देने की, जो आदमी अपने एक काम को करता है उस काम को मन लगाकर करता है, वही मन लगाकर भजन कर सकेगा, वही मन लगाकर सत्संग सुन सकेगा। जो काम करते हो उसी में मन, और नहीं। ऐसी आदत डालनी चाहिए, कोई काम करो, रसोई बनाओ तो रसोई में मन लगा कर रसोई बनाओ, भोजन करो तो भोजन में मन लगाकर भोजन करो, शौच स्नान करो तो मन लगा करके करो। तो मन लगाकर करने से आदत हो जाने से सत्संग भी मन लगाकर करोगे और भजन ध्यान करोगे तो मन लगाकर करोगे। ये आदत सुधारनी चाहिए। स्वभाव सुधारने से सब जगह स्वभाव काम देता है, तो जो काम करो उसी में मन लगाओ तो भगवान में मन लग जाएगा, भजन ध्यान साधन में मन लग जाएगा। ऐसा मत समझो कि भजन ध्यान तो मन लगाकर करना है और काम मन लगाकर नहीं करना, ऐसा नहीं। जो काम करो मन लगाकर करो वो काम बढ़िया होगा, और आदत से ये बड़ा भारी लाभ होगा। काम बढ़िया हो ये लाभ नहीं, ये तो लाभ है ही, परंतु आदत ही यही हो जाएगी। कोई जो काम उठे तो हरेक काम में उसकी बुद्धि प्रवेश करेगी, हरेक बात ज्ञान हो जाएगा। हमें आश्चर्य आता है कभी कभी, कभी कभी रोजाना काम करते हुए ठीक नहीं करते तो उनको देखता हूँ, बात के आश्चर्य आता है, मन में आता है कि तेरा अभिमान है, तुझे काम करना नहीं आता। उम्र भर बालकों को पालते पालते बूढ़ी हो जाती माँ, बालकों को जीवन भोजन कराने तो बालकों को ज्यादा परोसता जल्दा नहीं खा गया, थोड़ खा लेगा बालक, तो इस बालकों को समझाने भी किस तरह करेगा। ऐसे सुनाने वाले भी कैसे सुनाना चाहिए, मैं तो सीखता रहता हूँ। एक बात है जो अभिमान आता है, इस बात से क्षमा मांगता हूँ, मेरी बात अगर 5-7 वर्ष सुनता है तो खुद को मालूम देता कि पहले ये औरतें का विवेचन करते थे अब और तरह कर रहे, उनको मालूम होगा, वो परीक्षा कर लेगा मेरी कि 4 वर्ष पहले ऐसा नहीं कहते थे जैसे अब कहते, ऐसे सुनने वाले को मालूम पड़ेगा। बताओ भी सच्ची एक झूठी बात, तो मैं निगर रखता हूं तो इनको कहते कहते कहना ही नहीं आता, सुनते सुनते सुनना ही नहीं आता, कोई काम करे करना आता नहीं। कौन सी बात कैसे कहनी चाहिए, तो ये मेरे मन में एक अभिमान है, आप क्षमा कर अभिमान है कि मैं जिस बात को ठीक समझ गया हूँ उस बात के समझाने में मैं कठिन नहीं समझता हूँ। समझा दू ये तो ताकत नहीं है, पर समझाने में युक्ति प्रत्युक्ति से खूब कठिन से कठिन बात का सूक्ष्मता से विवेचन कर सकता हूँ। गहरी गहरी बात को विवेचन करके आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, ये नहीं है। समझो तो आप तैयार हो, समझेगा मैं कैसे समझा दूंगा। आप समझना चाहो तो समझ जाएगा, आप मदद करो हमारे साथ दो, अपन मारवाड़ी के बेलू से दो, बेलू से साथ बेलू से दो, दोनों समझाओगे तो फिर अपना ठीक हो जाएगा। तो आप ध्यान देकर समझे तब समझना होगा। तो एक बात सार है कि हर एक काम करो उसे मन लगा कर करो, केवल सुनना ही नहीं, केवल कहना ही नहीं, केवल पढ़ना ही नहीं, केवल जप ही नहीं, मन लगा कर करो। मेरे से कई भाई प्रश्न करते हैं कि मन कैसे लगे, तो मन लगाने की एक युक्ति बताता हूँ, आप ध्यान देकर सुनो और करके देखो उसको। सुगमता से मन लगा दें, कैसे मन लगे, तो तो आप ऐसे चुपचाप बैठ जाओ और भगवान के नाम का मन से जप करो, चाहे जबान से भी करो कोई बात नहीं है, पर मन से जप करो। उसमें हाथ में माला नहीं, माला भी मत रखो, अंगुलियों से नहीं गणना, और एक दो तीन बोलना भी नहीं, एक राम, दो राम, तीन राम, चार राम, पांच राम, छह राम तो सवार हुआ, ये बोलना भी नहीं मन से, और माला भी नहीं रखनी, हाथ से भी नहीं गणना, केवल राम 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 राम, ये नौ दफे हुआ, ना तो माला करे, ना हाथ से अंगुलियों से, मन से ही तो नाम बोलो, मन से ही गिनती रखो। बहुत बढ़िया युक्ति है, सफल होने वाली युक्ति है, ये करके देख लो। अब सीधी सरल बात है, कम से कम एक माला, एक माला 108 बार भगवान का नाम लो, उनमें चूको नहीं, बरोबर बरोबर नाम लेते गए, और जहां कर संख्या चूक गए वहां छोड़ो, फिर पाचा राम राम एक एक शुरू करो। ऐसे आध घंटा में भी अगर एक माला फेर लो, घंटा भर में फेर लो एक माला, देखो आप मन पर असर होता है नहीं होता है। पूछ लेते हैं कि मन कैसे लगे, तमाशा पूछ लिया, करते हैं ही नहीं। एक संत से पूछा कि महाराज मन कैसे लगे, तो उन्हें पूछा कि तुमने ये मेरे से ही प्रश्न किया है, पहले और किसी से किया है, कि और किसी किया था, उन्होंने क्या उपाय बताया, तो वो तो याद नहीं है, तो मेरी फजीती करोगे, उतनी याद नहीं है, काम में कैसे लाओगे, ये दशा है मैं सत्संग होगी, तो सत्संग सुनना कहाँ आता है, सुनना आवे तो सत्संग ही बड़ा विद्वान बन जाए, पढ़ाई करके इतना विद्वान जल्दी नहीं बन जाता जितना सत्संग से बनता है, पढ़ाई में विद्वान नहीं बनता है, परंतु विषयों का ज्ञान उसको, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, अनासक्ति योग कहते हैं, अष्टांग योग क्या है, कितने अंग होते क्या होते हैं, बिना पढ़ाई किए पंडित बन जाएगा, इतना विषय सामने आता है, कई विषय तरह तरह का। सत्संग में जैसी पढ़ाई होती है, एक ग्रंथ पढ़ने से वैसी पढ़ाई नहीं होती, एक ग्रंथ पढ़ने से एक विषय का ज्ञान होता है, सत्संग में व्यवहार का, परमार्थ का, लेन देन का सब तरह ज्ञान होता है, सब तरह की बातें आती है, कोई प्रश्न पूछ लेता है, कोई ऐसे प्रसंग आ जाता है, तो कितनी बातें आ जाती, कितना विषय ध्यान दे तो बड़ा समझदार बनता है। पांच चतुर होने की पांच बातें, केशा जनम पंडित मित्र चाच वारांगना राजसभा प्रवेश, अनेक शास्त्राणी विलोकितानि चातुर्य मूलानि भवन्ति पंच। तो ये पांच, पांच है चतुरता, हो जाए आदमी चतुर बन जाता है पांच बातों से। तो एक तो देश अटन, बहुत जगह जगह फिरे, घनी जगह फिरे, वो आदमी चतुर होशियार हो जाता है, वे लोग होशियार कर देते हैं उसको, वो दिन नहीं कर तो करा दे लोग। देशाटनम पंडित मित्रता से, यदि पंडितों से मित्रता हो, उनकी चर्चा चलती रहे, बिना पढ़े शत्रु हो जाता है। और वारांगना राजसभा, वेश्याओं के जाने वाला, और राजा राज की सभा में रहने वाला, और अनेक शास्त्राणी विलोकितानि, कई तरह के शास्त्र देख, कई तरह के शास्त्र देखा है, ये पांच आदमी को चतुर बनाने वाली चीज है। तो वो सत्संग के द्वारा सुगमता से हो जाता है, असली सत्संग देता है, उन विवेचन होता है, उनमें बहुत बातें आ जाएगी तरह तरह की, तो व्यवहार की भी आ जाती है, सत्संग की भी, पारमार्थ की भी आ जाती है, ज्ञान योग की, कर्म योग की, भक्ति योग की, लय योग की, हठ योग की, राजयोग की, अष्टांग योग की, कई बातें आ जाती है, उन बातों को ठीक ठीक सुनता है, कई बातों परिचित हो जाता है। और वो परिचित हुआ जिस विषय को सुना नहीं, ऐसे विषय में आप ब्याह करोगे छोरा छोरी का, उसमें आप बुद्धि काम करेगी, सत्संग सुनी हुई बात, ब्याह की चर्चा सुनी नहीं, कोई व्याख्यान हुआ नहीं, पर काम करेगी, नया काम करोगे तो उसमें आप बुद्धि काम करेगी। मेरी तो धारणा है गीता का ठीक तरह से अध्ययन करेगा, किसी विषय में भी उसकी बुद्धि प्रवेश न हो ये नहीं हो सकेगा, जिस चीज में बुद्धि प्रवेश हो जाएगी, ठीक तरह से अध्ययन करेगा। तो सत्संग सुनने वाले भाई बहनों को मन लगाकर सुनना चाहिए। अब एक और बात करता हूँ, एक दूसरा प्रश्न आया है कि तत्वक जीवन मुक्तों से प्रत्येक सुनने से क्या श्रोता में उसके ज्ञान का प्रवाह श्रोत प्रवेश होता है? वो श्रोत के जरूर होता है। जो जैसा जानने वाला है, जिसका अनुभव है और उस विषय का विवेचन करता है, वो विवेचन विलक्षण होता है। और एक शास्त्रों की दृष्टि से विवेचन करता है, उसका विवेचन और तरह का होता है। दोनों में फर्क होता है। शास्त्रों की दृष्टि से कहने वाले से भी लाभ होता है, वह में सुनने में केवल लाभ होता है भगवत चरित्रों से। भगवान के चरित्र कोई कहे, जानने वाला कहने वाला अनुभव तो विलक्षणता होता ही है, पर चरित्र में ऐसी विलक्षणता है कि भगवान के चरित्र में शक्ति, जैसे रामायण सुनो, भागवत सुनो, भगवान की लीला सुनो, तो वो सुनने मात्र से असर करता है। परंतु वह भी प्रेमी भक्ति के द्वारा सुनो, रात दिन का बहुत अंतर होता है, उसमें बड़ा अंतर होता है। परंतु चर्चा मात्र करने से, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने कहने से पढ़ने से स्वाभाविक अंतःकरण निर्मल होता है, पवित्र होता है। इस वास्ते मैं तो बहुत भाई बहनों को कहता हूँ, एकांत में मिलते हैं तो आप भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सत्यन, भक्त कुसुम, भक्त जैसे कई पुस्तकें हैं जो किताब छोटे छोटे थोड़े थोड़े मूल्य में मिलती है, उन पुस्तकों को पढ़ो, आपकी भक्ति का असर पड़ेगा। और बालकों को तो जरूर पढ़ाओ, कहानी रूप से पढ़ने में वे शौक से पढ़ लेंगे और भगवत भाव के उन पर असर हो जाएगा। तो भगवत चरित्र है, भक्त चरित्र है, इनमें एक विलक्षण शक्ति है। मैंने सत्संग की बात पहले कही थी, सत्संग की बात व्याख्यान होता है, जिन विषय का विवेचन होता है वो विवेचन में पहली बात कही वो है, और भगवान के चरित्रों में ऐसी सामान्य बात है। उसमें भी मन लगाएगा तो बहुत विशेष गदगद हो जाएगा, नेत्रों में आंसू आ जाएंगे, हृदय भर जाएगा, गला भर जाएगा आपका, ऐसी मस्त आ जाओगी एकदम। वो भक्ति की इतनी ताकत है, ये विवेक के द्वारा जो सत असत का विवेचन करते हैं, खूब गहरे समझते हैं, उसकी अपेक्षा भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते गहरे उसमें तल्लीन हो जाए, वाक गदगदा द्रवते हसते क्वचित विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज मद भक्ति युक्त भुवनम पुनाति। वाक गदगद वाणी हो जाए और द्रवचित द्रवित हो जाए, कहीं हंसता है, कहीं रोता है, कहीं चिल्लाता है और नृत्य करता है, ऐसे आप करो, आपका हृदय गदगद हो जाए तो अंतःकरण में सूक्ष्म जो वासना है, वे वासना ऐसे भगवान के चरित्रों से दूर होती है, वैसे विवेक के दूर नहीं होती है। विवेक गुरु जो हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, गहरे मन लगा करके गहरे उतर करके, उनसे इतना लाभ नहीं होता जितना भक्तों के भगवान के चरित्रों के सुनने से, अथवा नाम जप करने से, अथवा स्तोत्रों के पढ़ने से, स्तुतियों का पढ़ने से, उन पढ़ने से स्तुति होती है, प्रार्थना होती है, स्तुति है भगवान के ही गुणगान होता है, वो स्तुति होती है, भगवान से उसे मांगना होता है वो प्रार्थना होती है। ऐसे स्तोत्रों के पढ़ने से, मन लगाकर पढ़ने से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो भगवत चरित्रों से अंतःकरण निर्मल बहुत ज्यादा होता है, वो विवेक से नहीं होता है जल्दी उतना। सत असत नित्य गहरे उसे विचार करो, उसी अपेक्षा में उसमें ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा कैसे होता है वो अब मैं बात कहता हूँ, खूब ध्यान देकर सुने। विवेक में सत और असत दो चीज होती है, असत का त्याग होता है और सत वो ग्रहण करते हैं, ये विवेक की शक्ति है। तो सत को ग्रहण करने पर भी असत की सत्ता रहती है कि असत तो ग्रहण करा, असत अपने त्याजी है, हेय है, ये अपने उपाधि नहीं है, ग्रहण करने लायक नहीं है, ऐसा होने पर भी असत की सत्ता बनी रहती है। और भगवान के चरित्रों में, स्तोत्रों में, गुणों में तल्लीन होकर पड़ता है तो एक भगवान की रहती, दूसरी सत्ता नहीं रहती है। ये फर्क बड़ा भारी मोटा फर्क है। ये ख्याल में आया होगा, लेकिन फिर कह देता हूँ, दोबारा कह देता हूँ, भाई बहन ध्यान देकर सुने, विवेक बहुत बढ़िया चीज है। मैं विवेक का बहुत आदर करता हूँ, और पूछो तो मेरे विवेचन में विवेक प्रधान रहता है, मेरे चरित्र प्रधान नहीं रहते हैं। बीच में कह देता हूँ कुछ चरित्र की बात, पर मेरी प्रकृति में विवेक की प्रधानता है, तो विवेक में बहुत अच्छा और श्रेष्ठ समझता हूँ। परंतु विवेक करते करते विवेक में विश्री पृथक भावे धातु से विवेक बनता है, तो विवेक में दो चीज होती है, एक सत्य एक असत, एक नित्य एक अनित्य, एक सार एक असार, एक शुभ एक अशुभ, एक ग्राह्य और एक त्याज्य। ऐसे जो होता है वो विवेक होता है, सत्य और असत का विवेक होता है। तो सत में अपनी स्थिति करना है, असत का त्याग करना है, तो असत का त्याग कर सत में स्थिति होने पर भीतर असत की सत्ता रहती है, और भगवान के चरित्र सुनते हुए तत्कर हो जाए, गदगद हो जाए, अरे मस्त हो जाए, तो सत्ता रहती नहीं संसार की। इस वास्ते सूक्ष्म भीतर में वासनाएं हैं, वे भगवत चरित्रों से नष्ट होती है। इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो, अभी फिर आगे बताऊं। फिर ऐसी बात है, फिर सोच लें खूब, और शंका हो तो फिर पूजा दे दे, अभी चुप रहे हैं। वो बात सत्संग की और भगवत भक्तों की, दोनों की जो बातें हैं, दोनों में सुनाने वाला अगर प्रेमी भक्त होता है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे विवेक की बात कहने वाला अगर अनुभवी होता है तो उसका असर बहुत विलक्षण ज्यादा पड़ता है। जैसे पूछा है कि जो अनुभवी पुरुष है उनकी बात ध्यान दे करके और जिज्ञासु होकर के, जैसे भूख लगने पर अन्न गुण करता है, ऐसे भोजन बिना भूख के गुण नहीं करता। चीज तो बढ़िया ही होती है, पर बढ़िया क्या हो, पाचन शक्ति नहीं है, रुचे और जचे और पचे तीन बात होती है, तो उसका रस बनता है। ऐसे ही आपके जिस विषय के जानने की इच्छा है और उस विषय में आप गहरे उतर के जानोगे, तो जो विवेचन करने वाला है वो अनुभवी हो, केवल पुस्तकों की विद्या ही नहीं, अनुभवी हो। तो अनुभवी आदमी कहता है तो सुनने वाले के धीरे 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 में वो प्रवेश हो जाती है बात, सुनने मात्र से भीतर में बोध हो जाता है, पता लग जाता है ठीक तरह से। परंतु सरल होकर के, एक दिन मैंने कहा था, वो पक्षपात न रखे तो एक ज्ञान से ज्ञान भक्ति वैराग्य मुक्ति सब हो जाती है। उन्होंने पूछा था वहां पर कि वो कोई आड़ में लगावे, आदमी ज्ञान मार्ग में चलता है और आड़ में लगावे और ज्ञान की विवेक से बात सुनी जाए तो बोध हो जाए तत्काल। गीता में आया है, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये और यतताम सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति तत्वतः। थोड़ा ध्यान देकर अर्थ सुने, मनुष्यों के हजारों में, मनुष्य ले लिए बहुत सारे में हजारों मनुष्य, तो मनुष्यों के हजारों में कोई एक भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करता है? हरे तो यत्न करते ही नहीं, हजारों में कोई एक ठीक हृदय से यत्न करता है। और यतताम अभी यत्न करने वालों में, जितना धन करने वाले उनमें कोई एक ही तत्व इसे जानता है, तत्व को जानता है। सिद्धा नाम यत्न करने मामूली नहीं, अच्छा साधना करके बहुत बहुत दूर तक पहुंच गए हैं, ऐसे सिद्धों में भी कोई एक ही तत्व से जानता है, परमात्मा के तत्व को जानता है, ये गीता कहती है। इसमें तत्व की कठिनता का तात्पर्य नहीं है, इसमें तात्पर्य है कि श्रोता ध्यान नहीं देते, हजारों में कोई एक तत्व ठीक भजन सुनता है, और साधन करने वाले भी तत्परता से अच्छी तरह से साधन करते हैं, उनका नाम लिया है। तो ये तत्व बड़ा गहरा है, परंतु कठिनता नहीं है, आदमी करते नहीं, आदमियों की स्थिति बताई है, इसमें कठिनता का तात्पर्य नहीं है। तो कोई एक जगत जानते हम कैसे जानेंगे, ये नहीं है। इसमें बताया कि ये वस्तु स्थिति है, आदमियों की स्थिति है अभी वर्तमान की, उस स्थिति का वर्णन किया है। मनुष्यानाम सहस्रेशु कस्यदि यतति सिद्धे और यतताम सिद्धानाम कस्यमाम वेति तत्त्वतः, तत्व से कोई एक जानता है, ये सामान्य स्थिति बताई। ये तो बताया है यतन करने वाले, अभ्यास करने वाले। अब बताओ सुनने की बात, तो आश्चर्य वत पश्यति कष्ट देना मास्टर्य वदत थी उचान्य, इसको वर्णन करता है तो वो वर्णन भी उनका आश्चर्य की तरह लौकिक बातों की तरह नहीं होता है, पर तात्विक विवेचन उसका विलक्षण रीति से होता है। आश्चर्य वत पश्यति कष्ट देना और आश्चर्य वदत थी उचान्य अन्य आश्चर्य वदती, तो अन्य का तात्पर्य ये नहीं को जानता है वो नहीं कहता है, दूसरा कहता है, ये अन्य का अर्थ नहीं है। अन्य का अर्थ है जितने जो भजन कहने वाले हैं, वे कहने वालों में कोई एक ठीक जानता है, वर्णन करने वाले, पुस्तक पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले बहुत से हैं, परंतु स्वर्ण का आश्चर्य कष्ट देना आश्चर्य मत वदती, तो भजन विवेचन करने में कोई एक ही कसूर होता है, हरेक चतुर नहीं होते। सतेषु जायते शूरः, ध्यान देकर सुना है, सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः, सौ आदियों में एक शूरवीर निकलेगा और हजारों में एक पंडित निकलेगा और वक्ता दस सहस्रेषु और बोलने वाला दस हजार में एक निकलेगा। तो दस पंडितों में एक पंडित होगा जो वचन कर सके, विवेचन कर सके, हरेक नहीं कर सकेगा। जानते हुए समझते हुए भी विवेचन करना नहीं आता उतना हरेक को। इस बार श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम बताया है कि शरण जाओ श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ के, ब्रह्मनिष्ठ का तो अनुभवी है, श्रोत्रिय शास्त्रों की युक्तियां प्रतियुक्तियां जानता हो, दोनों बात बता दो, बताया ठीक तरह से। तो सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु पंडित वक्ता दस सहस्रेषु, दाता भव निर्वाण हुआ, दा वेग नहीं मिले, दस हजारों में दाता आशीष बहुत कम मिलता है। तो कहने वाला कोई एक ही होता है, अन्य का अर्थ है जितने आश्चर्य पश्यति जो कहने वाले अनुभव करने वाले हैं, उन अनुभव करने वालों में भी कहने वाला एक विलक्षण होता है। और आश्चर्यवत चेनम अन्य सुनोती, अन्य दूसरा आश्चर्य जब सुनता है, सुनता है तो नए ढंग की बात सुनता है, पुस्तक में पढ़ी उनकी पढ़ी उनकी पढ़ी, ये तो बहुत नए ढंग की बात है, ऐसे आश्चर्य की तरह सुनता है। और ऐसे सुनने वाला श्रुता तेनम तेनम न वेद कश्चित, कोई एक नहीं जानता है, सुनने वालों में कोई एक नहीं जानता है और साधन करने वालों में कोई एक जानता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्धे यदनाम सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति तत्वतः, श्रुत्वा पेन वेन कश्चित, इसमें सुन करके कोई एक ही जानता है, न मन सुन करके कोई एक नहीं जानता है, न वेद कश्चित, तो सुन करके नहीं जानते बहुत आदमी, मन सुन कर सुनने में वंचित कोई एक ही रहता है, यत्न करने में देरी लग जाती है। तो अभ्यास से वो तत्व नहीं मिलता है जितने तत्वज्ञ पुरुष के द्वारा वो तत्व मिलता है। छुट्वा प्यनम वेद न चैव कश्चित, कश्चित न वेद, कश्चन मह वेद, ये फर्क है। अब वो क्यों नहीं जानता है कि वो मन लगा कर मुझे सुनते नहीं। अब बात आती है कि ऐसे जो अनुभव पुरुषों के द्वारा सुना जाए तो क्या प्रवेश करती, वो शक्ति प्रवेश करती है सब में, पर सब आदमी पकड़ नहीं पाते हैं, थोड़े आदमी उन बातों को पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते हैं। तो वक्ता कहता है उसमें क्या फर्क है कि वक्ता का जो अनुभव है वो अनुभव वक्ता कह नहीं सकता, परंतु अपने अनुभव की बात है वो बुद्धि में लाता है, और बुद्धि में जितनी बातें लाता है उतने मन उनको युक्ति से मनन नहीं कर सकता, और मन में मनन जितनी होती है उतनी जबान नहीं कह सकती, और जबान जितनी कहती है उतने सुनने वाले के कानों तक सब बात नहीं पहुंचती, कानों तक यदि पहुंचती है उतने उसका मनन नहीं करता, और जितना मनन करता है उसमें बुद्धि में निश्चय नहीं होता, अरे बुद्धि में निश्चय जितना उतना अनुभव नहीं होता। ये क्रम है। तो कहने वाला का अनुभव और सुनने वाला का अनुभव कितनी देर हो गई? अनुभव हुआ, मन हुआ, बुद्धि हुई, जबान हुई, उसके कान हुआ, मन हुआ, बुद्धि हुई, स्वरूप हुआ। तो इतनी देर जाते हुए ठीक अनुभव में कोई सी बात आती है तो मन लगाकर सुनने से वो ठीक पहुंच जाती है, तो वह में कठिनता पड़ती है। परंतु मन लगाकर सुने तो बहुत जल्दी काम प्रवेश होता है, जरूर होता है। जिसमें वो जिज्ञासु जितना अधिक होता है उतना ही अधिक होता है। सतगुरु बूठा इंद्र सम, इंद्र जैसे वर्षा करता है, कमी न राखी कोय, पर वैसा ही फल नहीं बजे जैसी भूमिका हो। भूमिका और बीज होता है वैसा फल होता है। वर्षा तो एक समान बरती है, एक मतिरे की वेल होती है, एक विष्णुमा तस्तुम्बा कहते हैं, मतिरे की जैसा ही होता है तुम्बा, उसमें बरसती है। तो वर्षा में फर्क नहीं, जमीन में फर्क नहीं, खाद में फर्क नहीं, घाम में फर्क नहीं, वायु में फर्क नहीं, पृथ्वी में और जल में फर्क नहीं, परंतु मतिरे का साधु साधु होता है। अब उसके बीज वैसा है तो वो वैसा ही होगा। इस तरह से सुनने वालों पर असर, उनके भीतर जैसा बीज वैसा ही होगा। तो ये तो आपको बेली की बात बताई, इससे मनुष्य में विलक्षणता है। मनुष्य का बीज पलट जाता है, भाव पलट जाता है, सुनने वाले की श्रद्धा पलट जाती है। वो श्रद्धा पलटने से वो तूंबे का बीज उस मतिरे का काम हो जाता है। वो बीज मतिरा नहीं बनता, परंतु श्रोता आदमी अगर श्रद्धा भक्ति रखे, आदर पूर्वक सुने, अमाया अनुवृत्ति दो शब्द आए एकादश स्कंद में, मानो कपट नहीं हो, भीतर में कोई पकड़ नहीं हो, भीतर में किसी बात को कोई आग्रह नहीं हो, यार वो सुने ठीक तरह से, आग्रह होने से बाधा लग जाती, नहीं सुन सकता हो, वो अपनी बात पकड़ी हो गए तो तुझे भर सकता नहीं, और कपट नहीं हो, सीधा सरल हो, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, नारायण का भक्त की लगे किनारे नाव, ऐसा होता है तो उसको श्रोतक बहुत जल्दी लाभ होता है। ये एकदम भाव प्रवेश हो जाते हैं, वे अपनी आड़ न लगावे तो ठीक तरह से समझ जाते हैं। तो सुनने से उनके भाव जल्दी उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं तो जरूर प्रभाव होता है। यदि हाँ तो उसकी व्याख्या सुनना चाहते हैं तो ये व्याख्या मैंने करी, वह किस तरह से प्रविष्ट होता है, किस तरह से भाव अनुभव में होता है, अनुभव को कैसे बुद्धि में आता है, बुद्धि का कैसे मन में आता है, मन में कैसा जबान में आता है, जबान में वो कैसा कानों में जाता है, कानों में बात जाती है मन में कितनी जाती है, मन के जाकर बुद्धि में कितनी जाती है, बुद्धि में जाकर के स्वयं कितनी अनुभव में आती है, ये प्रकार है उसका। तो सुनने वाला भी ठीक हो, सुनाने वाला भी ठीक हो। पालट कहरा गुण कृषा पलटिया नहीं लोहा, वो पार्श पार्श क्या है, जो लोहा पर सोना नहीं हुआ तो कह तो असली पार्श नहीं, कह तो असली पार्श नहीं है, कह असली लोहा नहीं है असली, और कैसा कैसा मन निष्कपट सरल होकर के स्पर्श नहीं किया है। तीन बात चाहिए, पार्श भी असली हो, लोहा भी असली हो, जंगल मिट्टी लगा हुआ नहीं, साफ हो, और फिर बीच में केड़ा का पत्ता न लगा हुआ, साफ स्पर्श हो जाए तो तत्काल सोना बनता है। मन कहने वाला अनुभव नहीं है और सुनने वाला खास उस तत्व को जानने की निष्पक्ष होकर सरलता से जिज्ञासा नहीं है, और बीच में कुछ न कुछ अपनी अटकल लगा देते हैं, कुछ अपनी अपनी पकड़ रखते हैं, जो पास नहीं होता वो, और पारस हो जाए इतनी बात नहीं, विलक्षण बात है इसमें। वो तो पारस अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, पारस में लोह में फर्क है, पारस तो लोह को सोना बना देगा, पर पारस से बना हुआ सोना दूजे लोह को सोना नहीं बना सकता, परंतु असली अनुभवी पुरुष के द्वारा ठीक निष्कप सल से सुने तो वो खुद पारस बन जाता है, और उससे कोई सुने वो पारस बन जाता है, या पारसों की टकसाल हो जाती। ठीक से अगर कहने वाला हो, ठीक सुनने वाला हो तो वही पर्स बन जाए। इस वास्ते पारसुर संत में बड़ो अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान है, जैसे वो बन जाते पारसुपारी बन जाता है, तो पारसों की टकसा हो जाती। इस वास्ते सुनने वालों को मन लगाकर सुनना चाहिए, फिर लाभ होता है। तो ये व्याख्या सुनना चाहते हैं, कहते हैं अब दूसरी बात पूछे, कैसे तो और पुस्तक से सत्संग करना तथा प्रत्यक्ष उनके सुनने का सत्संग करना उनमें कुछ फर्क है क्या, इसमें प्रश्न है। ये बड़ा भारी फर्क है, कैसे सुनते हो उससे भी लाभ होता है, पुस्तक पढ़ते हो उससे भी लाभ होता है, परंतु अनुभवी पुरुष के साथ सुनने से उनसे बहुत ज्यादा विचित्र लाभ होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा ध्यान देकर आप लोग सुने। कैसे सुनते हैं तो जिन सत्संग जिन सज्जनों ने सत्संग सुनी है, उसी सुनने की कैसे सुने उसके जो असर पड़ता है वो नए भाई पर असर नहीं पड़ता। कैसे असर तो पड़ेगा ही विवेचन का, पर जिन लोगों ने सुना है यार फिर वही कैसे सुने तो वो सबका सब दृश्य वो सब सामने आ जाता है, तो उससे एक विलक्षण असर पड़ता है, और नया सुने तो उससे भी असर पड़ता है, असर पड़े पर नहीं रहेगा परंतु उतना नहीं पड़ता। ऐसे ही पुस्तक है, उस पुस्तक के पढ़ने में जो पुस्तक जिसने लिखी है उसके द्वारा वो बात सुनो और एक अपने मन से पुस्तक को पढ़ो, बड़ा अंतर होता है। जब कहते हुए सुनते हैं तो कहने वाले की दृष्टि, कहने वाले की हाथ आदि की मुद्रा, कहने वाले का भाव और नेत्र, इन सब का असर जाकर श्रोता पर पड़ता है, तो उसको जितना असर होता है केवल पुस्तक से वो नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि वो भाव है, वो भाव नहीं है, वो मुद्रा नहीं है, वो युक्ति नहीं है, वो चेष्टा नहीं है, और भीतर का जो प्रवाह है बोध का वो प्रवाह नहीं है, केवल बातें बातें सुन करके विचार करते हैं। तो सुनने में तो सुनाने वाले की बुद्धि की प्रधानता है और पढ़ने में अपनी बुद्धि की प्रधानता है, ये अंतर है। सुनाने वाले उसकी बुद्धि प्रधान रहेगी, हमारी गौण रहेगी समझने के लिए, और पढ़ने में हमारी बुद्धि ही प्रधान रहेगी, उसकी बात गौण रहेगी। इस वास्ते हमारी बुद्धि से इतना हम नहीं समझ सकते जितना उनकी बुद्धि से समझते हैं। और जिसमें सुनाने वाली कृपा हो जाए विशेष, तो उस कृपा से बहुत विशेष लाभ होता है। तत्काल पढ़ाई में भी वो हृदय से पढ़ाता है, हृदय से सुनाता है, तो उनका लाभ बहुत विशेष होता है, ज्यादा लाभ होता है जो सुनने वाला वैसा ही हो। जैसे गाय का बछड़ा होता है तो गाय का दूध पी करके ही वो पुष्ट होता है, परंतु एक बछड़े की माँ मर गई, गाय मर गई, उसको गाय का दूध पिलाते हैं, यार एक बछड़ा स्वयं चूंता है दूध पीता है, उन दोनों बछड़ों में फर्क रहेगा। जिसकी माँ मर गई है उसके रोए भी उतने बढ़िया नहीं, उतनी पुष्टि नहीं होती। अच्छे आदमी तो कहते हैं ये ब्याड़िया है, ये ब्याड़िया बेचारा, मारवाड़ी शब्द है, ये ब्याड़िया है, इसकी माँ मर गई। गाय का दूध गाय का पीते हैं, पीते भी हैं, परंतु गाय से वो जीता रहेगा, अच्छा रहेगा, ज्यादा पीता थोड़ा पुष्ट भी हो जाएगा, परंतु गाय का दूध थोड़ा भी मिलता है तो गाय माँ को चूंता है उसमें असर होता है, वो और तरह होता है। क्यों होता है ऐसा, कि गाय का दूध तो दोनों को मिलता है, पर हुंकार करती है गाय और चाटती है और जो पावसती है ये भाव थोड़ा ये दूध में, केवल दूध पी लो बोले तो दूध गुण करता जीता रहेगा ठीक हो जाएगा, परंतु गाय चाटती है हुंकार करती है संघास कर देती है और पावस जाती है, ऐसे उनकी जो प्रसन्नता है उस प्रसन्नता से जितनी बछड़े की पुष्टि होती है उतनी केवल दूध से नहीं होती। ऐसे संत महात्मा कृपा करके विशेषता से कहे और सुनना वैसे उन्मुख हुए, तत्काल काम होता है, तत्काल, उसमें देरी का काम नहीं है। परमात्मा तत्व है उसमें भविष्य नहीं होता है, हर एक काम में भविष्य होता है, करोगे फिर हो जाएगा, धीरे धीरे ठाकना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ भरा तो रुताया फल हो, ज्यादा से फल कैसे आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ये धीरे धीरे की बात नहीं है, ये तो तत्काल है। जिस समय विचार कर उसी क्षण हो जाता है, ऐसे तत्काल विषय है ये। क्यों है कि परमात्म तत्व भी मौजूद है, सुनने वाला भी अनुभवी मौजूद है, और सुनने और सुनाने वाला भी अनुभवी मौजूद, सुनने वाला भी मौजूद है, तत्व भी मौजूद। भविष्य क्यों है बताओ? भविष्य का कोई कारण नहीं है। ये तो बता के श्रवण करो, फिर निर्दिघन करो, निर्ध्यासन करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि करो, फिर सविकल्प करो, फिर निर्विकल्प करो, फिर सबीज करो, फिर निर्बीज। लंबा रास्ता है। यहाँ तो उसने कहा, उसे दिया, खत काम हो जाते उसी क्षण। तो इसमें भविष्य होता ही नहीं। भविष्य तो होता है, वो तत्व जानते ही नहीं। वो तत्व के नहीं है, तत्व नहीं जानते हो। तत्व जानते हो, उसमें भविष्य तो होता नहीं। या भविष्य तो होता है, वो तत्व नहीं है। भविष्य क्या है? अब आज मैं कहती थम्बा है, आम मेरे थम्बा है, क्या इसमें जोर आया? है मौजूद, कहने वाला बताने वाला है, और सुनने वाला देखने वाला जानना चाहता है, देर क्या लगे किन्तु मौजूद। ऐसे वो तत्व सदा नित्य निरंतर प्रत्यक्ष अनुभव रूप सब में विद्यमान है। अब उसकी तरफ दृष्टि कराई, दृष्टि करते ही वो पकड़ लेगा, जान लेगा। तो इसमें यह नहीं कि समय लगेगा, बहुत समय चलेगा। बहुत भाई लोग, मेरे माताएं बहुत ऐसी भावना कर रखी है कि धीरे धीरे सुनते सुनते कभी होगा। तो ये कभी होगा सांसारिक काम है, पारमार्थिक काम कभी नहीं होगा है, वो तो अभी होगा। पर ये दृष्टि नहीं, ये तो दोनों सुनते हैं, सो हुआ तो नहीं। तो सुनते कहाँ है भाई? राज में हम रोते हैं, करते हैं, पर सुनाई नहीं हुई। सुनाई हुई तो कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे सुनते हुए सुनाई नहीं हुई हमारी बात की, सुनाई हो जाए तो कार्रवाई पट हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बेपरवाह से सुनते हैं। समय लग करके हो जाएगी ये बात नहीं, समय लग करके होगा, नहीं भी होगा। परंतु अगर ठीक सुनाने वाला और सामने हो तो देरी का काम है नहीं। इस भविष्य तो होता ही नहीं, क्यों? परमात्मा भविष्य नहीं है, परमात्मा सदा सर्वथा वर्तमान है। वस्तु पैदा होने वाली होती है, उसमें भविष्य होता है। जो पैदा होने वाली नहीं है, सदा सदा सर्वदा निरंतर रहने वाली वस्तु है, उसमें भविष्य कैसा हो? समय पा करूंगा, समय क्यों लगेगा भाई? बताने वाला बता रहा है, सुनने वाला सुनना चाहता है, वस्तु सोना सोता वगैरह दोनों में है, जो कि जो मौजूद है। फिर देरी का कारण क्या? कि अंतर्गण मेला है, अंतर्गण मेला है, विश्वास नहीं होता, अंतर्गण होने से हो जाएगा। तो मैं एक बात कहता हूँ, आप क्षमा करेंगे, इस विषय में मैंने विवेचन किया है, पुस्तक भी लिखी है, साधे और साधन पुस्तक लिखी है। तो इसमें जो समय लगता है ना, तो समय क्यों लगता है? अंतःकरण शुद्ध होने से, आप क्षमा करेंगे, मेरी बात को ध्यान देकर सुने, और उसमें शंका हो तो कल पूजा लेकर कर लेना, खूब मनन करके पूजा लिखना। कारण अंतःकरण अशुद्ध होने से तत्व ज्ञान नहीं होता, तो तत्व ज्ञान अंतःकरण से होता है क्या? और तत्व ज्ञान में का कारण रहता है, कर्ता भी नहीं रहता। कर्तृत्व अभिमान वाला तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। कर्तृत्व ही नहीं रहता तो कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण छह कारक है। छह कारकों में कर्ता भी नहीं रहता, जो स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र विविक्षता अर्थ कर्ता, जो क्रिया में सबसे प्रधान होता है उसको कर्ता कहते हैं। जो कर्तृत्व नहीं है तो कर्ण कहाँ रहेगा वहां? और कर्ण के द्वारा बोध नहीं होता है, कर्ण रहित बोध होता है, और कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, कर्ण रहित साधन नहीं होता। साधन करते हैं वो कर्ण के सहित करेंगे, कर्ण पर कर्ण सापेक्ष नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है। साध्य और साधन पुस्तक है, उसको आप देखो, उसको अच्छी तरह से विवेचन किया है उसका, अच्छी तरह से। तो कर्ण सापेक्ष नहीं है, परमात्म तत्व कर्ण नहीं है, कर्ता होता है। उसमें एक मार्मिक बात बताता हूँ, विशेष ध्यान देने की। कर्ता जो एक कारक है ना, कारक छ, उक्ता नुक्त तया द्वेधा कारकाणि भवन्ति षट, छह कारक होते हैं। ये छह कारक क्रिया की सिद्धि में है, खूब ख्याल रखना। और परमात्मा क्रिया से अतीत है, वस्तु से अतीत है, देश से अतीत है, काल से अतीत है, क्रिया की सिद्धि में अच्छा कारक होते हैं। तो क्रिया थोड़ी है परमात्मा, कोई नहीं मान सकता क्रिया उसको। तो कारक होते हैं वो क्रिया के संबंधी होते हैं, क्रिया करने वाले। क्रिया कोई भी क्रिया करोगे तो कारक की जरूरत होगी। एक क्रिया जहां है ही नहीं वहां कार्य काम क्या करेगा, वहां कर्तृत्व भी नहीं है, कर्ण कैसे रहेगा? अंतकरण के द्वारा उस तत्व का बोध नहीं होता है। साक्षात बोध माना है जहां वेदांत के ग्रंथों में, तत्व साक्षात्कार होता है, वहां ज्ञान भी नहीं होता। ये तत्काल ज्ञान होता है, ज्ञान होते ही अज्ञान का नाश कर ज्ञान भी शांत हो जाता है, बोध हो जाता है। ये वहां तात्विक बात है। तत्व ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान उस ज्ञान से प्राप्ति होती है। तो तत्व ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती है, तत्व ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान नष्ट होने पर शुभ है जो रह जाता है। जो तत्व ज्ञान भी नहीं पहुंचता वहां कर्ण पहुंचेगा? आप थोड़ा विचार करो, जो पढ़े लिखे वो सोचे इस विषय में। क्या तत्व ज्ञान स्थायी होता है? तत्व ज्ञान अज्ञान को दूर कर तत्व ज्ञान खुद नष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, एक स्वरूप है जो रह जाता है, वो है जीवन मुक्ति। तो उसमें कर्ण कैसे रहेगा? कर्ण तो बहुत दूर रहेगा बेचारा। ख्याल में आ गई होगा, नहीं आएगा तो फिर पूछ रहे ना। तो बोध जो होता है वो स्वयं में होता है, वो कर्ण में नहीं होता है, बुद्धि में नहीं होता है, मन में नहीं होता है, वो स्वयं होता है। यद पाद पंकज रसैनम विना मे सन्न प्रसन्न पर पुरुष पुरासीत यद पाद पंकज रसैनादिदानी नासीत न सास्त न भविष्यति भेद बुद्धि। संक्षेप सारंग में सर्वज्ञ मुनि कहते हैं, जब तक गुरु महाराज के चरणों के रज को स्वीकार नहीं किया, तब तक सन्न प्रसन्न पर पुरुष पुरासीत परम पुरुष परमात्मा सन्न भी असन्न होता हुआ भी नहीं कहते था। सब जगह पूर्ण कण कण में मौजूद, सबके भीतर है जो का तो मौजूद, मैं बिल्कुल नहीं कहते, मन है ही नहीं वो तत्व। सन्न प्रसन्न पर पुरुष पुरासी यदि पाद पंकज शरणादिदानीम, जब गुरु महाराज के चरणों की रज्जी को स्वीकार किया तो नासीत, पहले अज्ञान नहीं था। ज्ञान होने पर ऐसा नहीं होता, पहले अज्ञान था, अब मेरे को ज्ञान हो गया। भेद बुद्धि नाशित न शास्ति न भविष्यति, न पहले अज्ञान था न अब अज्ञान है, न अज्ञान आगे रहेगा। ऐसा नहीं होता है ज्ञानी के कि पहले अज्ञान था अब मेरे को ज्ञान हो गया। उसे ज्ञान तो ये था ही पहले, इधर दृष्टि नहीं थी, ख्याल नहीं था। ये होता है ज्ञान उत्पद्यते पुरुषम आता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। बट वो उत्पन्न होना कहते हैं लोगों को समझाने के लिए, वास्तव में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान तो है, स्वतः सिद्ध है, यार उत्पन्न होता है नाशवान होगा, जो उत्पन्न होता है उसका नाश हो जाता है। तो ज्ञान उत्पन्न होगा तो कभी नष्ट भी हो जाएगा, नष्ट नहीं, वो तो है ज्यो का त्यो, पहले ही वैसा ही है, आप भी ऐसा ही है, अगर ऐसा ही है, उसके तीनों काल है ही नहीं, न भूत है न भविष्य है न वर्तमान है, कालातीत तत्व है। वो काल के अधीन कैसे होगा, तो उत्पन्न कैसे होगा? वो तो है। तो ना शीत न चास्त न भविष्यति भेद बुद्धि, भेद बुद्धि थी नहीं, भेद था ही नहीं, है ही नहीं, भेद होगा भी नहीं, वो है जो जो रहेंगे। इस बात से उत्तम सहज अवस्था, वो सहज अवस्था है, स्वाभाविक है, सबकी स्वतः अपने स्वरूप की स्थिति है, सबको नित्य प्राप्त है और संसार नित्य ही अप्राप्त है। ये कभी किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं, और वो अप्राप्त किसी को ही नहीं है, कसाई है, महान अशुद्ध है, मूल है, विमुख है परमात्मा से, उसके भी सामने तत्व ज्ञान लुप्त नहीं है। तत्व ज्ञान वैसा विषय है, तो वहां कोई नहीं है, अपात्र है, ये पात्र है, वो पात्र अपात्र, अपात्र कौन है जो जानना नहीं चाहता, पात्र कौन है जिज्ञासा, जो जिज्ञासा है ये पात्र है, सीधी सारी बात है। अंतकरण शुद्ध अशुद्ध तो होगा अंतकरण के द्वारा होने वाले क्रिया से, जैसे मैं लिखता हूँ तो लेखनी हाथ और अक्षर बढ़िया हो तो बढ़िया लिख देंगे, लेखनी बढ़िया लिखना बढ़िया नहीं होगा। तो क्रिया की सिद्धि में कारक होते हैं, क्रिया से अतीत में कारक क्या करेगा? खूब शंका लाओ कल, जो फोन विवेचन करें, मेरे को मौका मिलेगा, मेरे को लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, सबको ही लाभ होगा। तो वो तत्व है, वो वर्तमान की वस्तु है, वो भविष्य की नहीं है। धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे साधन लाभ होगा, धीरे धीरे होगा, उसमें कोई निषेध नहीं है, निर्धीर हो जाएगा। क्योंकि आप धीरे धीरे मानते हैं, हम सब कल्पवृक्ष की छाया में है, कल्पवृक्ष के नीचे जाकर जैसी कल्पना करे उसी सिद्ध हो जाती है। तो भगवान कल्प वृक्ष है, सदा विद्यमान है, उसके नीचे बैठकर करोगे हमारे धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे होगा, कि जल्दी होगा फिर जल्दी होगा, कि कुछ वर्षों के बाद हो तो कुछ वर्षों के बाद होगा, आप जैसे करो वैसा होगा। क्योंकि हम सब परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, आप करोगे धीरे धीरे होगा, जल्दी कैसे होगा, नहीं हो सके उसको, उसको तो होगा ही नहीं। कहते वो तो है मौजूद, तत्व मौजूद, बताने वाला मौजूद, सुनने वाला मौजूद, देरी का कारण क्या? आप सुनने की भूख ही नहीं है आपको, उसकी जिज्ञासा ही नहीं है, उसके लिए तड़फण भी नहीं है, उसके लिए व्याकुलता नहीं है, उसके लिए जोरदार जिज्ञासा नहीं है। उपर्युक्त दोनों सत्संग में ज्यादा प्रभाव किस सत्संग से पड़ता है? अनुभवी पुरुषों के द्वारा करने में उपर्युक्त दोनों सत्संग में ज्यादा प्रभाव किस पड़ता है? ज्यादा प्रभाव पड़ने से क्या रहस्य है? ज्यादा पढ़ने में रहस्य बोध हो जाए, उसके बाद और विवेचन, और क्या विवेचन करे भाई, हमारे आता है जैसे मैंने सुना है पढ़ा है उसके अनुसार, जैसे अब याद आ गई वैसी बात कह दी, अब है क्या भगवान जाने। नारायण नारायण नारायण
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक भाद्रपद शुक्ल एकादशी संवत 2050 तदनुसार 27 अगस्त 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम।